नमस्कार, मैं हूं नगमा। उन्नाव बलात्कार पीड़िता की मां, सीएए विरोधी कार्यकर्ता और एक आशा वर्कर, ये तीनों उन 50 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जगह दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाएं हैं। इस लिस्ट से साफ है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के चुनावी नारे के साथ 40% सीटें महिलाओं को देने के अपने वादे को पूरा कर रही हैं। और सामने है बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे दल, जहां नेताओं के आने जाने का दौर चल रहा है। योगी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। पिछड़े, दलित, युवाओं की बेरोजगारी, ये सभी दर्द अभी इन ओबीसी नेताओं को सताने लगे हैं। कैसे बीजेपी ने इनकी उपेक्षा की है, ये बातें ये बताने लगे हैं। इस्तीफे की शुरुआत करने वाले मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, खुद को वो नेवला बता रहे हैं जो नाग रूपी आरएसएस को खत्म करेगा। किस जाति के कितने वोट हैं, कमंडल चलेगा या मंडल हावी होगा, और सांप नेवले के इस खेल के दौर में कांग्रेस अलग खड़ी है खामोशी से। चुनावी सर्वे में वो भले पीछे है, चुनाव में उनकी जीत की संभावना को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बावजूद इसके प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी में एक नई राजनीति की लकीर जरूर खींची है, एक नए अध्याय की शुरुआत की है। उस महिला को टिकट देकर जिसकी बेटी बलात्कार पीड़ित है, उसी सीट बंगारमऊ से जहां से आरोपी बीजेपी का विधायक रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, जो फिलहाल जेल में है।
लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की चुनावी जंग में हाथ आजमा रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रियंका ने वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया।
जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे।
जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह का नाम भी शामिल है।
हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें।
कांग्रेस ने चुनावी हिंसा की शिकार रही रितु सिंह, कोरोना के दौरान जी जान से काम करने वाली और मानदेय बढ़ाने की मांग पर लाठी खाने वाली आशा वर्कर पूनम पांडे, अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाली अल्पना निषाद।
बात यह है कि लड़ाई आपकी बढ़ती जाती है, लड़ाई का आपका घेरा बढ़ता जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले जो इंसान के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे लड़ाई का एरेना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और लड़ा जाएगा।
40% महिलाओं को सीटें दे करके कांग्रेस ने एक अच्छी नई पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म आधारित राजनीति हावी है। ऐसे में इस नए मूव का कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, इस पर शक बरकरार है।
प्रियंका के मुताबिक इस सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव के बाद अपनी राजनीति के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे यूपी की लड़ाई जारी रखेंगी।
मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं वो प्रयास जारी रखूंगी।
इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी चले गए, ये कहते हुए कि 22 की सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने महिलाओं को जागरूक बनाने का बीड़ा बेशक उठाया हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि यूपी में जातियों को साधे बगैर उसकी कोई भी चुनावी राह बहुत मुश्किल है। लखनऊ से सौरभ शुक्ला के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।
तो पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ती गई है। अभी भी मुकाबला कहा जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच है। 22 की लड़ाई जो है वो सीधे भाजपा और सपा के बीच ही है बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जो फोकस है वो लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय की लड़ाई लड़ना है। उनकी ये मुहिम उसे चुनावी जीत दिला पाएगी या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन यूपी और देश की राजनीति में कांग्रेस एक नया प्रयोग तो कर ही रही है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। तो कांग्रेस के इस नए प्रयोग पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं और ये चार मेहमान जो जुड़ रही हैं उनमें से आपको हम बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस ने इन्हें पहली लिस्ट में टिकट दिया है। हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी आशा सिंह जो उन्नाव रेप पीड़िता की मां है जिन्हें कांग्रेस ने उन्नाव से टिकट दिया। सदव जाफर होंगी जिन्हें लखनऊ सेंट्रल से कांग्रेस ने टिकट दिया है और वो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में शामिल रही हैं। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें काफी मारा पीटा भी। और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे मेहमान पंखुड़ी पाठक जिन्हें कांग्रेस ने नोएडा से टिकट दिया है, ममता चौधरी जो मोहनलालगंज सीट से जिन्हें टिकट मिला है, और हमारे साथ हैं लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर कमाल खान। इन तीनों से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को कि आप लोगों को टिकट मिला, पंखुड़ी और ममता। और पंखुड़ी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। फोकस प्रियंका गांधी का जो रहा महिलाओं को टिकट देने पर, जिन्होंने वादा किया है उस वादे को पूरा करती हुई दिख रही हैं, यूथ पे फोकस है। आप वैसे पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी जुड़ी रही हैं और अब आप कांग्रेस के साथ हैं, ये बताइए कि किस तरह की एक नई राजनीति की शुरुआत देख रही हैं आप उत्तर प्रदेश में?
देखिए, हम लोग हमेशा ये सुनते थे कि राजनीति में बदलाव की जरूरत है, राजनीति में ये जरूरत है कि सामान्य लोग जो हैं वो राजनीति में आ सके, उनको भी एक जगह मिल सके। और आज प्रियंका जी ने जो काम किया है उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है और ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति की दिशा बदलने का काम होगा। एक जो राजनीति में हम देखते हैं कि अपराधियों को बड़ा आसानी से टिकट मिल जाता है कि अगर कोई माफिया होगा, कोई क्रिमिनल होगा, कोई दंगाई होगा तो हर पार्टी तैयार रहती है उसे टिकट देने के लिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई सताया हुआ है, अगर किसी ने अपनी खुद की लड़ाई लड़ी है किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ, उसको किसी पार्टी ने टिकट दिया हो। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश एक प्रियंका जी ने दिया है महिलाओं के सशक्तिकरण का, युवाओं के सशक्तिकरण का।
वैसे एक तरह से ये इतिहास बन रहा है कि महिलाओं को इतना टिकट दिया जा रहा है और जो चुनाव में टिकट मिलते हैं, पंखुड़ी जी आप तो जान रही हैं कि कैसे जाति के आधार पे, विनेबिलिटी के आधार पे, पैसों के आधार पे कौन चुनाव जीत सकता है। तो कांग्रेस ने जो ये इस समय शुरुआत की है जिसमें ये देखा गया है कि कौन पीड़ित है, किनके साथ अन्याय हुआ है, कि कैसे महिलाओं को जो अपनी लड़ाई लड़ रही है उन्हें आगे किया जाए, इसे कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि चुनाव जिता दे या चुनाव में बहुत फर्क डाले कांग्रेस के लिए। क्या लगता है आपको, लोग इस बात को कितना स्वीकार करेंगे?
देखिए, ये सवाल पहले भी प्रियंका जी से पूछा गया था जिस समय उन्होंने घोषणा करी थी कि वो 40% महिलाओं को टिकट देगी। तब उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी महिलाएं हार जाएं, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर जीतेंगी और मजबूत महिलाएं हर विधानसभा में और कई सारी महिलाएं पूरे प्रदेश में खड़ी होंगी जो लड़ेंगी और जो महिलाओं की बात करेंगी। तो देखिए, हार जीत तो एक अलग बात है, लेकिन ये भरोसा महिलाओं में आ रहा है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकती हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से, मेरा जो क्षेत्र है, मैं नोएडा में यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में काम कर रही हूँ और महिलाओं में इतना उत्साह है और महिलाओं को ये जानकर इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार उनको पूछा जा रहा है, एक सिलेंडर से ज्यादा उनका उनका जो मोल है उसको एक सिलेंडर के आगे समझा जा रहा है। और मैं जहां पर भी जाती हूँ तो लड़कियां मुझे कहती है कि हमें पता है कि प्रियंका जी हमें स्मार्टफोन और स्कूटी देंगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका शायद महत्व आज लोग ना समझ रहे हो, लेकिन महिलाओं को एक राजनीति में उनकी पूछ हो रही है, उनको गिना जा रहा है, उनसे चर्चा हो रही है। महिलाओं के लिए मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा संकेत, और महिलाएं भी बहुत ही सकारात्मक तरीके से इसको ले रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां पे हमेशा से जाति और धर्म का बोलबाला रहा है वहां पे ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि आधी आबादी को निग्लेक्ट किया गया है।
ममता जी, आधी आबादी को निग्लेक्ट किया गया है जहां पे धर्म और जाति का बोलबाला रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वहां पर ये किस तरह से इस चुनावी खेल को बदल सकता है? आपको लगता है क्या आपकी चुनाव प्रचार की रणनीति होगी? किस तरह के बाहुबल के सामने आप खड़ी हैं?
देखिए, हमने 5 साल 6 साल में ये देखा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार रही है उसने लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न और अत्याचार करने वाले लोगों को संरक्षण दिया।
ममता, आपने आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ ठीक, अब आ रही है, बोलिए।
ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। महिलाओं के लिए कोई भी सम्मानजनक तरीके से ना कोई कार्य किया गया, ना कोई योजनाएं दी गई, ना ही उनकी सुरक्षा की गई। जो ऐतिहासिक फैसला प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को टिकट वितरण किया है, जो पहली प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी पूर्ण की है, उससे आधी आबादी की महिलाओं को ये विश्वास हो गया है कि हमारी उम्मीद की किरण यदि कोई है तो वह प्रियंका गांधी जी हैं। और इस चुनाव में 2022 के चुनाव में ये आपको खुद दिख जाएगा कि ये आधी आबादी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ, प्रियंका जी के साथ खड़ी आपको दिखेगी।
जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि एक तरह से जो चुनाव का जिस तरह का रंग रूप रहता है उसे कुछ बदले जरूर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं आशा सिंह जो उन्नाव से हैं, उन्हें उन्नाव से टिकट दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। पहले तो आशा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको किस तरह जानकारी मिली और आपने चुनाव लड़ने का इरादा कब किया? आप हमें सुन सकती हैं आशा जी?
हाँ, मैं सुन रही हूँ। जी है
जी, आपको मुबारक हो, टिकट मिल रहा है आपको। आपको किसने बताया आपको टिकट मिला और आप चुनाव लड़ना चाहती थी?
आपके लिए धन्यवाद, मीडिया वाले के लिए धन्यवाद, आप पैनल को धन्यवाद, ने मेरा साथ दिया धन्यवाद, मेम की धन्यवाद। प्रियंका दीदी की धन्यवाद जो हमको टिकट दे ही लिए।
जी तो आपको जानकारी कैसे मिली कि कांग्रेस आपको उम्मीदवार बना रही है और आप किस तरह चुनाव प्रचार करेंगी? उन्नाव की जनता से आपको उम्मीद है?
हाँ, उम्मीद है मैम, जनता से उम्मीद है, इसलिए है मैम कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ किसी बेटी बहन के साथ ना हो। महिला का दर्द महिला जानती है, एक महिला होके मेरा दर्द जानती है। हमको टिकट प्रियंका दीदी ने दिया।
आपके परिवार ने बहुत संघर्ष किया, आप लोग कई सालों से बहुत परेशान रहे हैं, अब आप अपनी लड़ाई, आप चुनाव लड़ रही हैं और अपनी लड़ाई आगे आप लड़ सकती हैं, इतनी आपको आपको सशक्त किया जा रहा है। आप यहां पर जब जो आरोपी रहे उनके जेल जाने के बाद भी जब उपचुनाव हुए तो भी बीजेपी जीती थी, तो आपके सामने जो लोग हैं, चुनाव प्रचार आपका किस तरह का होगा? क्योंकि लोग बाहुबल पे, धन के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, तो आपको लग रहा है ये लड़ाई जो है मुश्किल है अभी आपके लिए?
मेरे साथ मैम जनता है, मेरे चैनल मीडिया मेरे साथ है मैम, मेरा सब साथ देंगे, उसके लिए मेरे साथ मीडिया चैनल।
जी जी
जी अब आपसे मैं फिर बात करूंगी, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, बहुत ये हिम्मत और हौसले की लड़ाई आपके लिए होगी और जो टिकट मिला है आशा जी को वो जरूर बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी महिलाओं में और पीड़ितों में ये उम्मीद जरूर जगाता है कि उन्हें किस तरह मौका मिल सकता है। हमारे साथ सदफ जाफर भी जुड़ गई हैं जिन्हें लखनऊ सेंट्रल से कांग्रेस ने टिकट दिया है। सदफ जाफर ने CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में हिस्सा लिया, उसमें वो शामिल रहीं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और सदफ ने उस समय काफी मारपीट भी झेली जैसा उन्होंने बताया है। अक्सर सदफ बहुत मुबारक हो आपको कि आपको टिकट मिला है, आपने भी एक बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी है और CAA के दौरान तो आप जेल गईं और वहां पर हिंसा भी हुई आपके साथ। अभी तो लड़ाई एक तरह से कहें तो शुरुआत हुई है फिर से एक नई लड़ाई की।
हाँ बिल्कुल लगवा, बहुत शुक्रिया इस मुबारकबाद का। हाँ ये है कि संघर्ष किया है, संघर्ष का दायरा बड़ा हो गया है और कहते हैं कि जिम्मेदारियां जो है वो कंधे देख के दी जाती हैं। मेरे साथ जो मेरे साथी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ममता हो, चाहे पंखुड़ी हो, चाहे आशा जी हो और वो तमाम महिलाएं, हम सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत संघर्ष करके अपने लिए ये जगह बनाई है और इस जगह को प्रियंका जी ने अप्रिसिएट किया, इस मकाम तक पहुंचने में हम लोगों की बहुत हैंड होल्डिंग करी और आज हमें ये मौका दिया है कि हम अपने आप को ही नहीं सशक्त करें बल्कि अपने साथ और कई औरतों को भी ये हिम्मत दी है कि उन्हें भी हम मजबूत करेंगी। तो इस बात को लेके जो है वो ये ना सिर्फ एक क्रूर सरकार के ऊपर एक मुंहतोड़ तमाचा है बल्कि साथ ही साथ ये जो मिसोजिनिस्ट सरकार है, जो इतनी एंटी वुमन है, जो कभी नए नए पैतरों से हमें हताश करने की कोशिश करती है, कभी हमारी होर्डिंग लगा देती है, कभी हमें ट्रोल करती है, तो इस सरकार के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि देखिए किस तरीके से औरतें ना सिर्फ लड़ती हैं बल्कि उनको अपने संघर्ष को किस मकाम तक ले जा सकती हैं। तो ये दायरा बड़ा करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार।
आपने कहा ये मिसोजिनिस्ट सरकार है, महिला विरोधी है, क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये आरोप जो लगा रही हैं, क्या किया इस सरकार ने? और CAA के दौरान जब आप विरोध प्रदर्शन कर रही थी तो आपको गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद जेल में भी कई तरह की प्रताड़ना झेली आपने और उस समय की लड़ाई भी बड़ी मुश्किल रही आपके लिए, उसके बाद बाहर आना और अब चुनाव लड़ना, आपको इसकी उम्मीद थी?
मुझे यकीन था अपने लीडरशिप पे, मुझे पता था कि क्योंकि मैंने दीदी से यही कहा था कि दीदी आई एम देयर फॉर द पार्टी एंड फॉर द लीडरशिप, आप जहां पे भी कहेंगी हम वहां पर अपना जो है वो योगदान देंगे, छोटा बड़ा जितना जो भी दे सके। उन्होंने लेकिन इस बात को समझा और उन्हें लगा कि नहीं ये लड़की है और लड़ सकती है, तो उन्होंने ये तय करके हमें जो टिकट दिया है ये बहुत बड़ी बात है और मुझे यकीन है कि हम सारी महिलाएं जो हैं ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि हम अपनी पार्टी का, उसने जो हमें विश्वास दिलाया है, उसका मान भी रखेंगे। प्रताड़ना झेलना देखिए एक अलग बात थी लेकिन हम सब क्या ममता का जो संघर्ष है वो कम है? वो तीन बार की पार्षद है, पंखुड़ी का संघर्ष कम नहीं है, आशा जी ने जो संघर्ष किया है उसको कैसे कम आंक ले, कैसे कम आके उस हाथरस की बहादुर महिला का जो लड़ती रही और इतनी बहादुरी से लड़ती रही। तो हम सब अपने अपने दायरे में संघर्षशील महिलाएं हैं
जी,
और उसको सराहकर जो प्रियंका जी ने काम किया है, उन्होंने वॉक द टॉक जिसे कहते हैं वो किया है। अब तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ प्रचार देख रहे थे जबकि रात के अंधेरे में जो है हमारे यहाँ लड़कियों को पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाता था। प्रियंका जी ने जब कहा कि 40% रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उन्होंने बढ़ चढ़ के रिप्रेजेंटेशन दिया।
मैं वापस आऊंगी आपके पास सदफ और पंखुड़ी और ममता, आप तीनों के पास में, आशा जी भी हमारे साथ है, हमारे साथ कमाल जुड़े हुए हैं और कमाल ने लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखी है, उसकी बारीकियों को वो समझते हैं। कमाल ये एक नए अध्याय की शुरुआत कह सकते हैं, लड़कियों को महिलाओं को इतने बड़े पैमाने पर टिकट देना, अब ये चुनाव में हार जीत पर क्या असर डालेगा वो एक अलग सवाल है, पर संकेत इसका जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह आप देख रहे हैं कि राजनीति को बदल रहा है?
देखिए ऐसा है, ये बे इंतहा या कहना चाहिए कि सबसे बेहतरीन मुद्दा है लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ेंगे कि यह सबसे मुश्किल मुद्दा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे वोट लेना बेइंतहा आसान है, इस मुद्दे पे वोट लेना बेइंतहा मुश्किल है। ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि ये जो मिसोजिनी है, जो पेट्रियार्की है, जो एक फ्यूडलिज्म का भी पार्ट है, ये किसी राजनीति से नहीं है, समाज से आती है। और शायद ये पेट्रियार्की जो है ये फादरहुड के कॉन्सेप्ट के साथ समाज में आई, या जो मार्क्सिस्ट मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया उसके साथ ये पैदा हुई। लेकिन आपको एक छोटी सी एक दो मिसाल दें जिससे आपको लगेगा कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। गांव में अभी भी महिलाएं जो हैं वो अपने मर्दों के कहने पे वोट देती हैं, या जाति के कहने पे, या प्रधान जी के कहने पे, जो मर्द वहां डोमिनेट करते हैं। कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भारतीय जनता महिला मोर्चा के लोग विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां वाटर कैनन चलने लगी, हम लोग एक फुटपाथ पे खड़े थे, उनकी एक नेता हमारे पास आई भाग करके शेड में खड़े होने के लिए। हमने उनसे पूछा आप क्या करने जा रही थी जो आपके ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही है। उन्होंने कहा हम अखिलेश यादव को चूड़ियां भेंट करने के लिए जा रहे थे। तो हमने कहा और ये हमें रोक रहे हैं, तो हमने कहा आप मुख्यमंत्री को चूड़ियां क्यों भेंट करना चाहती हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो नाकारा है इसलिए हम चूड़ियां भेंट करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि क्या जो लोग चूड़ियां पहनते हैं वो नाकारा होते हैं। तो वो अचानक मतलब चौंक गई, उनको समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें। तो ये जो पेट्रियार्की है ये मर्दों का विरसा नहीं है, ये उतना ही औरतों का भी है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमने लखनऊ में एक बहुत बड़े अखबार के चीफ एडिटर को एक उनकी एक रिपोर्टर से नाराज होने के बाद ये कहते हुए न्यूज रूम में सुना कि औरत जात होकर के ऐसी बात करती है। वो अखबार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है, उसका चीफ एडिटर कहता है कि ये औरत जात होकर ऐसी बात करती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्टर है या हमारी मातहत है या वो जबान लड़ा रही है या मैं उसका बॉस हूं, वो मुझसे कह रही है। हमारे घर में आज भी जो महिला हमें खाना बनाती है उन्हें हम चाची कहते हैं। जब हम खाने के मेज पे बैठते हैं तो जब वो रोटी सेक के लाती हैं तो वो रोटी सबसे पहले हमारी प्लेट में डालती हैं, हमारी वाइफ की प्लेट में नहीं डालती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में हमेशा मर्दों के बाद खाना खाया है
जी।
तो ये नैरेटिव को बनाना जो है जितना बेहतरीन है उतना ही ये मुश्किल काम है, लेकिन ये एक बेहतरीन शुरुआत है और एक बहुत बड़ा रिस्क है
जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो पितृ सत्ता है वो इतनी ज्यादा हावी है, जो पेट्रियार्की है वो इतनी ज्यादा हावी है दिलो दिमाग पर कि उसको बदलना औरतों के जहन पे भी वो बेइंतहा हावी है, और ऐसे में ये लड़ाई और भी मुश्किल होती है। बहरहाल एक बेहतरीन मुद्दा उठाया है यहां पे कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए उसकी तारीफ जरूर करनी होगी, चुनावी हार जीत को किनारे रखते हुए कि कितना ये फायदा पहुंचाएगा। पर इस वक्त कमाल जो चुनाव हो रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, अगर आप देखें तो आने जाने का सिलसिला बना हुआ है, और अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के वोट किधर जा रहे हैं अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं उन्हें अखिलेश, बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। क्या मंडल हावी हो गया है कमंडल पर, ऐसे मुद्दे हैं, और इसमें कांग्रेस अलग थलग खड़ी एक और कहानी लिख रही है। तो ये जाहिर है कि उसके लिए इस चुनाव में ये मुश्किल जरूर है जैसा आप कह रहे हैं, और इस सहारे ये जो लैंगिक समानता है उसको लेकर जो वो आगे बढ़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इससे हम किसी तरह के एक बदलाव की, एक नैरेटिव बदलने की कम से कम उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं।
नहीं देखिए, है क्या कि जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक मतलब कोई भी काम में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है
जी।
बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन एक ऐसे समाज में जहां पे हिंदुत्व के नाम पे वोट जोड़ने की कोशिश हो रही हो, तमाम जातियों के नाम पे वोट जोड़ने की कोशिश हो रही हो, वहां बिल्कुल ऐसे है जैसे जीसस क्राइस्ट के नाम पे आप वोट मांगना शुरू कर दें उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये एक बेहतरीन कोशिश है, उसे सराहा जाना चाहिए, उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है, वो मुश्किल है लेकिन लेकिन मुद्दा बेहतरीन है।
बिल्कुल बिल्कुल। सदफ, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंखुड़ी और आशा जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं ममता आपको आपसे जानना चाहती हूं कि संघर्ष आप तमाम लोगों का रहा है और आपको एक बार फिर से मौका मिला है अभी, तो किस तरह की नई राजनीति की उम्मीद करें हम जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और अगर 40% सीटें जो है वो महिलाओं को दी जाती हैं, किस कैसे आपकी आपका जो चुनावी प्रचार होगा वो कैसे अलग होगा पुरुषों से और किन बातों पर आप फोकस करना चाहेंगी?
देखिए शुरू से ही हम लोगों का ये मानना है, सॉरी मेरी आवाज थोड़ा सा बैठी हुई है,
कोई बात नहीं।
मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला को सशक्त करना, महिला को शक्ति देना, महिला को आगे बढ़ाना, ये आज से नहीं बहुत पहले से ही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और प्रियंका जी ने इसमें और दमखम के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से 40% टिकट का जो वितरण किया है इसलिए किया है कि जब 40% में से विधायक बन के जाएंगी तो वो महिला जो दबी कुचली महिलाएं हैं जिन पे अत्याचार होता है, जिनका उत्पीड़न होता है, उन महिलाओं के बल से खड़े होने का काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है
जी, अब जैसे
सबसे बड़ी बात की
जी एक मिनट
सबसे बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से महिला सुरक्षा में विफल रही है। चाहे आपने अभी खुद कहा उन्नाव का कांड हो, हाथरस का कांड हो, यदि कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी अगर संघर्ष ना करती।
ठीक, आपकी आवाज इस वक्त शायद म्यूट हो गई है। आशा जी हमारे साथ हैं। आशा जी आप अपने जनता से आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको ये मौका मिला है और एक बड़ा मौका है आपके लिए और आगे अभी आपने आपके परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई अभी एक और लड़ाई लड़ने का समय आया है। किस तरह से आप प्रचार में जाएंगी और आप चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं? आशा जी
मैम, हमको प्रियंका गांधी ने टिकट दिया है, हम चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी की धन्यवाद, प्रियंका गांधी ने हमको टिकट दिया, प्रियंका गांधी मेरे साथ रहेंगी, हम उनको जीत के उनका हाथ दिखाएं, उनके हाथ में धरेंगे, प्रियंका गांधी मेरे साथ रहेंगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, हमारी जीत रहेगी। हमको ये सरकार में न्याय नहीं मिली और ये सरकार ये चुनी जाए कि हमको न्याय मिले, न्याय हमको न्याय का भरोसा है कि सरकार दूसरी चुनी जाएगी, हमको न्याय जनता चुनेगी सरकार बनेगी, हमको ये सरकार में न्याय नहीं मिला
जी, सरकार में न्याय नहीं मिला, आप जनता चुनेगी, आपको उम्मीद है आप जीतेंगे। सदफ जाफ पर आपसे आखिरी कमेंट जानना चाहती हूँ। चुनाव में आपके सामने वो जाति है, धर्म है, पैसे हैं, मुद्दे जो हैं वो अलग हैं और राजनीति भी किन मुद्दों पे वोट होता है हम जानते हैं, तो ये लड़ाई मुश्किल है जिन मुद्दों पर आप लड़ेंगी चुनाव।
लेकिन नगमा आपने जिन तमाम मुद्दों की बात करी, औरतें जो हैं इन सारे, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, औरतों का संघर्ष एक अलग ही होता है। वो जो पेट्रियार्की और मिसोजिनी से डील करती है अपने घरों में चार दीवारी के पीछे, चाहे वो सड़क पर निकल के उसको बाल पकड़ के कभी घसीटा जाए, कभी वो अपने चोटों पे मेकअप लगा ले और आंसुओं को छुपा ले, औरतों की तकलीफें, उनके संघर्ष, उनकी छोटी छोटी चीजों के जद्दोजहद, उनकी कंसेंट, ये तमाम जो कई ऐसे मुद्दे हैं, जब कहती हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो ये उन तमाम मुद्दों से जोड़ी जाएगी ये लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ वही लड़ाई नहीं है कि चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किन मुद्दों के साथ लड़ सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मैं लड़ सकती हूँ एक अच्छी हाइजीनिक जगह पे बच्चा पैदा करने के लिए, मैं लड़ सकती हूँ बेहतर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, मैं लड़ सकती हूँ सस्ती और बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो ये इन तमाम मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने तक के लिए सीमित नहीं है,
ठीक है।
तो इसलिए हम उन जब मुद्दों की बात करेंगे तो ये इन सारे बैरियर्स को तोड़ के निकलेगी और यही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आपको धर्म जाति में बांटा जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन हम सबको चाहिए थी, हम सबको बेहतर सुविधाएं चाहिए थी।
आप सबको शुभकामनाएं इन तमाम अच्छे मुद्दों के लिए, लड़ाई आगे आप लड़े मजबूती से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का शामिल होने के लिए हमारे साथ। प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।
और अब हम बात कर रहे हैं भारत की सीमा के करीब चीन के बुनियादी ढांचे के निर्माण की। एनडीटीवी को मिली सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से ये बात साफ हो रही है कि चीन भूटान की सीमा में कम से कम दो गांव बना रहा है भूटान की सीमा के अंदर, और ये दोनों गांव आपस में सड़क से जुड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सैटेलाइट से, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये निर्माण किया है चीन ने। यहां पर कई इमारतें दिख रही हैं और दो बस्तियां सी बसाई हैं। ये वो इलाका है जो भूटान के अंदर पड़ता है। ये दूसरा गांव आप देख सकते हैं यहां पर, जहां निर्माण चीन ने किया है और एनडीटीवी ने इन्हें गिना है। 166 निर्माण यहां हुए हैं। 18 नवंबर की ये तस्वीरें हैं और इसके अलावा सड़कों का यहां काफी निर्माण दिख रहा है। और खास बात यह है कि इलाका डोकलाम के पठार से करीब 30 किलोमीटर दूर है। डोकलाम वो इलाका जहां 2017 में भारत और चीन के बीच कई महीने तक गतिरोध और तनाव बना रहा था, और तब भारत ने इस इलाके में चीन की सड़क निर्माण गतिविधि को रुकवा दिया था। उसके बाद से चीन ने यहां भारतीय मोर्चों को बाईपास कर दूसरे एक्सिस से सड़कों का निर्माण करवाया है और अब भूटान की सीमा के अंदर ये दो गांव बसाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो 1 जनवरी 2022 की हैं, और इस समय इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहां बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये निर्माण साफ स्पष्ट है यहां सैटेलाइट की तस्वीरों से। हैवी अर्थ मूविंग मशीनें यहां जमीन को समतल करने के काम में लगी हुई हैं और इसका भी आगे इस्तेमाल कर सकता है चीन किसी और मकसद के लिए। चीन की तरफ ये पूरा इलाका सड़क नेटवर्क से आपस में जुड़ा हुआ है। अभी ये साफ नहीं है कि जो दो नए इलाके चीन ने बसाए हैं वहां वो सेना के जवानों को ठहराएगा या वो किसी और काम आएंगे या भूटान की जमीन पर कब्जा करने का चीन का ये तरीका है। नक्शे पर आपको दिखाते हैं, भूटान को आप देख सकते हैं, डोकलाम वो इलाका जहां 2017 में भारत और चीन के बीच गतिरोध रहा था, कई महीने तक विवाद रहा था, चीन का सड़क निर्माण वहां भारत ने रुकवाया था, उसके करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर भूटान की सीमा के अंदर चीन ने ये दो गांव बसाए हैं। भूटान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, इसलिए भूटान के अंदर चीन का इस तरह से निर्माण करना भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है।